His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Sri Sri Radha Govinda Dev ki, Sri Sri Panch Tattva ki, Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki, Mudita Pavan Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Sab mere piche dohraiye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Ena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tapta Kanchana Gavarangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. तो आज हम चर्चा करेंगे इस परंपरा के जो महान छह भक्त हैं जिनको षड गोस्वामी कहा जाता है. क्या वृंदावन का जिन्होंने पुनर्निर्माण किया है या जिनकी कृपा के कारण हम वृंदावन को देख पा रहे हैं या जा पा रहे हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के छह प्रमुख पार्षद या भक्त हुए हैं जिनको षड गोस्वामी कहा जाता है. तो षड गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब भी है, गो का मतलब है इंद्रिया और स्वामी का मतलब है मास्टर या कंट्रोलर. तो जिन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त किया है और अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण, उनकी सेवा में नियुक्त किया है, वो वास्तव में गोस्वामी हैं. तो ऐसे छह गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए हैं जिनका नाम है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी. क्या नाम है? रघुनाथ दास गोस्वामी. तो छह गोस्वामी कौन कौन से हैं? श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी. तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों कहते हैं कृष्ण का जो नाम है कई बार उससे भी अधिक प्रभावशाली उनके भक्तों का नाम है. वैष्णव के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति बहुत अधिक तीव्रता से पवित्र होने लगता है और कृष्ण की जो अनुकंपा है, कृपा है, वो उनको प्राप्त हो जाती है. इसलिए भगवान के भक्त सदैव सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं. तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो जितना मेरा भजन करता है हे अर्जुन उतनी ही मात्रा में मैं भी उस व्यक्ति का भजन करने लगता हूं. कृष्ण कैसे भजन करते हैं, कृष्ण भी अपने हाथ में माला लेकर वृंदावन में जब गोचारण करने के लिए निकलते हैं गोवर्धन आदि पर गवों को लेकर, तो कृष्ण भी अपने भक्तों का नाम उच्चारण करते हैं दिन रात। जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि शयने कि भोजने किबा जागरणे, क्या सोते समय क्या जागते समय आप सदैव क्या करो, कृष्ण नाम का कीर्तन करो। इस प्रकार से जीवन को ढालो कि कृष्ण नाम आप सोते समय भी आपके मुख में क्या हो जाए, निकल जाए। हाँ, क्योंकि कृष्ण कहते अंतकाले च मामेव, अंतकाल में किसका स्मरण होना चाहिए, मेरा कृष्ण का। और भगवान ने वो कितना कठिन है जानना कि अंतकाल कब आएगा, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने एक महासूत्र दे दिया, उससे बढ़कर सूत्र कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा क्या सूत्र है, तस्मात सर्वेशु कालेशु। अभी ये पता नहीं है कि अंत समय में कब, अंत समय कब आएगा, उस समय नाम लेना है उस, तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा, क्या करना सीखो अर्जुन, तस्मात सर्वेशु कालेशु, तुम सारे समय में मेरा नाम उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जिस प्रकार से आज्ञा देते हैं, केवल कृष्ण बोलते नहीं है, कृष्ण अपने जीवन में भी उस शिक्षा का पालन करते हैं। तो भगवान अपने नाम का तो जप करते ही हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में वो अपने भक्तों के नामों का उच्चारण करने के लिए सदैव अपनी जिह्वा को लगाते हैं। इसलिए पूरे दिन कृष्ण जब गोचारण करते हैं तो सारे गवों के नाम कृष्ण क्या करते हैं, पुकारते रहते हैं। जब वापस घर आ जाते हैं तो मदर यशोदा नंद महाराज आदि के नामों का उच्चारण करते हैं, अपने सखाओं के नामों का उच्चारण करते हैं। कृष्ण ब्रज में अपना नाम ज्यादा बोलते नहीं है, सदैव भक्तों का नाम का उच्चारण करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में सुनना उतना ही लाभदायक है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, जितना हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। कृष्ण के बारे में सुनने से हम पवित्रता महसूस करते हैं, कृष्ण की ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है, वैसा ही आकर्षण हमारा भगवान के प्रति होता है जब हम वैष्णव के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में सुनते हैं। कभी कृष्ण के बारे में हम अकेले कृष्ण कभी होते नहीं है, कृष्ण सदैव किसके साथ होते हैं, अपने भक्तों के साथ। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनकी एक अमेरिकन लेडी डिसाइपल थी जदुरानी माताजी, तो उन्होंने एक कृष्ण का पेंटिंग बनाया जिसमें कृष्ण अकेले थे। तो जब प्रभुपाद के पास पेंटिंग आया तो प्रभुपाद ने कहा ये इम्पॉसिबल है, हाँ ये पेंटिंग गलत है, क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो अपने मनोकल्पना का आधार लेकर वो पेंटिंग को बनाते हैं, काल्पनिक पेंटिंग्स। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं वो शास्त्रों के आधार पर चित्र बनाते हैं, जैसा एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवतम में, पुराणों में, महाभारत रामायण आदि में हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही वो चित्र बनाते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद के पास वो पेंटिंग आया तो प्रभुपाद ने कहा ये पेंटिंग गलत है, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण के साथ सदैव कौन होते हैं, उनके भक्त होते हैं। हमेशा चाहिए तो मोर होना चाहिए, गोपिकाएं होनी चाहिए, या तो ग्वाल सखाज होने चाहिए, या हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण अपने भक्तों के बिना क्या है, अपूर्ण है, पूर्णता तभी है। इसलिए भगवत गीता कृष्ण भगवत गीता बोलते हैं, तो भगवत गीता में भगवान ने एक भक्त अष्टकम ही लिख दिया। हम तो बहुत सारे अष्टकम सोचते हैं, लेकिन भगवत गीता में एक भगवान ने अष्टकम ही बोल दिया अपने भक्तों के बारे में। 12वें अध्याय में भगवान कहते समय भक्तो, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है। और इतना ही नहीं, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब विभूतियों का वर्णन किया, विभूति योग, कि ये चीज सर्वश्रेष्ठ है जिसको देखकर तुम मेरा स्मरण कर सकते हो, भगवान ने कहा। तो बहुत इस भौतिक जगत की जो सर्वोच्च वस्तु है हर फील्ड में कृष्ण उसका वर्णन करते हैं। और कृष्णा कहते हैं कि वास्तव में इन सब विभूतियों में सर्वोत्कृष्ट कोई विभूति मेरी है। तो कौन सी विभूति है मेरे सर्वोत्कृष्ट? मेरे डिवोटीज, मेरा जो भक्त है उससे बढ़कर मेरी विभूति नहीं है। ये तो अलग अलग चीजों को देखने के लिए आप वहां स्मरण करना टफ है, लेकिन भक्तों को देखने मात्र से कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं। दर्शने पवित्र कर ये तुम्हारा गुण, भक्त का ये गुण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो कपिल देव हैं वो अपनी माता देवहूति को पूछती हैं, कपिल देव की माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से पूछती हैं कि मैं तो इस भौतिक सागर में डूब गई हूं और भौतिक आसक्तियों से घिरी हुई हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिसके द्वारा ये भौतिक बंधन भौतिक आसक्ति शिथिल हो सकती है, कम हो सकती है? तो देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। विदु का मतलब है विद्वान। प्रसंगम अजरम, जो आसक्ति है इस भौतिक जगत की वो व्यक्ति के बंधन की कारण बनती है, लेकिन उसी आसक्ति को यदि हम किसमें लगाते हैं, सैव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसी अटैचमेंट को उसी आसक्ति को हम भगवान के भक्तों में लगाते हैं तो हमारे लिए मोक्ष के द्वार इस भौतिक जगत के बंधन के दरवाजे या वैकुंठ के द्वार हमें क्या हो जाते हैं, सरलता से खुल जाते हैं। इसलिए वास्तव में जितना हम भगवान के बारे में सुनने की आकांक्षा अभिलाषा रखते हैं उतनी ही मात्रा में हमारे हमें भक्तों के बारे में श्रवण करने के लिए उत्साह रखना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि ये जो पृथ्वी देवी है वो भी रो पड़ती है। कब वो रोती है? जब ऐसे भगवान के महान शुद्ध भक्त इस पृथ्वी को त्याग कर चले जाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा ठाकुर वैष्णवगण अवनीर सुसंपद, कि जो भगवान के भक्त है वो पृथ्वी की असली संपदा है, वो असली हीरे हैं, जवाहरत हैं, माणिक्य हैं। हाँ, पृथ्वी की असली संपदा वो है। जब वैष्णवगण इस पृथ्वी में चलते हैं तो पृथ्वी बहुत अधिक अपने आप को आनंदित अनुभव करती है, जैसे कि पुष्प वर्षा हो रही है। और इसी पृथ्वी में जब आसुर चलने लगते हैं तो पृथ्वी को क्या करना होता है, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाना होता है कि प्लीज मेरी रक्षा करो, भार हरण करने के लिए पापों का बोझ इतना अधिक बढ़ रहा है। तो इसी कारण से पृथ्वी का जो संपदा है, आभूषण है, पृथ्वी अपने आप को सुसज्जित महसूस करती है जब वो देखती है कि उसके ऊपर भगवान उनके जो शुद्ध भक्त है वो विचरण कर रहे हैं। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में सुनने के लिए व्यक्ति को सदैव ही क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। क्यों तत्पर होना चाहिए? क्योंकि भगवान ने जब विभूतियों का वर्णन किया और कहा कि हे अर्जुन सर्वोत्कृष्ट विभूति तो मेरे भगवत भक्त हैं, उससे बढ़कर विभूति नहीं है इस संसार में। क्यों? क्योंकि मच्छिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त हैं उनका जो चित्त है सदैव मेरे चित्रों से अंकित रहता है। हम किसी से प्रीति रखते हैं तो उसका चित्र सदैव हमारे हृदय में क्या होता है, प्रकाशित होता है, दिखता है, चलायमान होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे जो भक्त सर्वोत्कृष्ट जो मेरी विभूति है उनके हृदय में मैं सदैव निवास करता हूं। वो चित्र कृष्ण का चित्र प्रकट होता है। रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने जब विजय प्राप्त की और वापस जब अयोध्या गए, सारी वानर सेना उनके पुष्प विमान को लटकते हुए जा रही थी और भगवान कह रहे थे कि यहाँ यहाँ मैं आपको सर्च कर रहा था, सीता देवी और सबको बताते हुए जा रहे थे सारे लीला स्थलियों को। और फिर जब ये अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या पहुंचने के बाद भगवान राम और सीता ने सोचा कि सबने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, इनको जरूर पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, जैसे मैराथन गया, सारे भक्तों को पुरस्कार मिला है, तो भगवान राम ने सोचा बिना पुरस्कार अवार्ड गिविंग सेरेमनी होना चाहिए। तो सीता देवी के हाथ से सबको दिए जा रहे थे उपहार, तो भगवान ने उस सेरेमनी से पहले ही प्रीतिभोज का अरेंज किया, आयोजन किया था, और हनुमान को कहा कि आप मेनू डिसाइड करो और जितने भी बंदर हैं, ये सेना है वानर सेना, उनको फिस्ट खिलाए जाए। तो फिस्ट तो खाना शुरू कर रहे थे, उनको सर्व किया गया। भगवान राम ने सोचा मुझे जाके देखना चाहिए। हाँ, जैसे सीनियर डिवोटी सन्यासी जाके देखते हैं भक्त लोग कैसे प्रसाद ले रहे हैं, सर्विस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो भगवान राम हनुमान के साथ निकले, देखा कि वहां प्रसाद सर्व हो रहा है और छोले बनाए गए थे। हाँ, रामायण में वर्णन आता है कि बंदरों को खाने के लिए डिफिकल्टी हो रहा था, उनको क्या पता छोले कैसे खाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान राम देख रहे थे, एक ने छोला ऊपर उड़ाया और ऐसे जंप लगा के खाना शुरू किया, कोई इसके प्लेट से खा रहा है, कोई उसके प्लेट से खा रहा है। इसको देखकर भगवान राम बहुत अधिक आनंदित होते हैं और बाद में सबको गिफ्ट्स दी जाती हैं। तो सीता देवी हनुमान के पास जाती है और उनको बहुत ही मूल्यवान हीरो का जो हार है वो प्रदान करती है। तो हनुमान जी का हम सुनते हैं, जैसे उनके पास वो हार आया तो हनुमान तोड़ने लगे अपने दांतों से, तोड़ते जा रहे। सीता देवी को लगा कि ये पागल है, बंदर वैसे पागल होते हैं, उनको लगा कि ये पागल है, इतना मूल्यवान हार जो गले में धारण करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे, तोड़ रहे हैं, एक एक मणि को तोड़ते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा क्या देख रहे हो इसमें, तोड़ते जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि मेरे जो आराध्य देव है, मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम इसमें विद्यमान है या नहीं है। तो सीता देवी ने कहा तुम इतना कहते हो, क्या तुम्हारे हृदय में भी है वो? उन्होंने कहा मत चिंता मदगत प्राण, मेरा प्राण है श्री राम, मेरे चिंता में सदैव निवास करते हैं। तो भगवान के दिव्य रूप को भगवान राम अपने हृदय से दिखाते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो वैष्णव गण हैं जिनके बारे में श्रवण करना, जिनके प्रति आसक्ति बढ़ाना हमारे लिए सरलतर उपाय है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए। दक्षिण भारत की उस लीला को आप सबने सुना है कि रामानुजाचार्य के कई गुरु थे, उनमें से एक थे कांचीपुरम थे। तो कांचीपुरम में ये लीला आती है, वहां वरदराज के विग्रह है और भगवान वरदराज अपनी अभय मुद्रा को ऐसे करते हुए वहां विद्यमान है उस मंदिर में, और उनके हाथ में आप आज भी जाते तो वहां लिखा है मां शुचः आप डरो मत। गीता में भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरो मत। तो जो कांचीपुरण है वो भगवान वरदराज में जो वर देने वाले में उन्हें राजा है, किंग है, एक्सपर्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे वरदराज भगवान की सेवा करते हैं और उसको एकांत सेवा कहा जाता है। श्रीरंगम में विभीषण भगवान रंगनाथ की सेवा करते हैं और वो उस विशेष सेवा का नाम एकांत सेवा है, जिस समय भक्त और भगवान केवल दो ही अकेले होते हैं। तो ये जो कांचीपुरण है, जब अल्टर बंद होते थे तब जाकर भगवान की सेवा करते थे नाना प्रकार से, तो उस समय रोज कई दूर उनको चल के जाना होता था। श्री पेरुमुदर से आगे वो निवास करते थे, कई किलोमीटर दूर चल के जाते थे सेवा के लिए। और ऐसे जब वो जाते थे तो एक दिन एक शूद्र व्यक्ति उनको मिला और उन्होंने कहा हे कांचीपुरण, आप तो रोज वरदराज की सेवा करने के लिए जाते हो, तो आप एक दिन पूछो उनसे, क्या पूछो, आप ये पूछो कि मैं उनके धाम में जा पाऊंगा या नहीं। तो इन्होंने कहा आज पूछ लूंगा और कल तुम्हें बताऊंगा। तो कांचीपुरण गए, बहुत सरल वृत्ति के वैष्णव थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, उस एरिया में, और जब वो सेवा कर रहे थे, फैन कर रहे थे दोपहर के समय में, हम अल्टर बंद करके एसी ऑन करके फैन ऑन करके निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां श्री वैष्णवास क्या करते हैं, फैनिंग करते, पर्सनल सेवा। तो वहां कांचीपुरम जब उनकी सेवा कर रहे थे तो उस समय सेवा करते करते पूछा कि हे वरदराज आप बताओ कि ये जो उस व्यक्ति ने मुझे आज प्रश्न पूछा है, एक शूद्र है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसने प्रश्न पूछा है कि वो आपके धाम जाने के योग्य है या नहीं है। तो वरदराज ने कहा वो बिल्कुल क्वालिफाइड है। क्यों, इन्होंने पूछा, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हो और आपके प्रति वो प्रीति रखता है, आपके प्रति आसक्त है, शुद्ध भक्त के प्रति, उनकी सेवा के लिए, तो इसी कारण से वो योग्य है मेरे धाम आने के लिए। तो ये जब दूसरे दिन गए तो उनको कहा, भगवान ने तो कहा था आप क्वालिफाइड है, उन्होंने ये नहीं बताया क्या कहा। और फिर कांचीपुरम ने 6 महीना सेवा कर रहे थे, तो करते करते उन्होंने सोचा अभी उनका तो प्रश्न पूछा, मेरा अपने बारे में पूछना होगा। कांचीपुरम वरदराज की सेवा करते करते कहते कि हे वरदराज आपकी तो मैं कब से सेवा कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, संशय आत्मा विनश्यति, संशय को लेकर मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं, आपके धाम जाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने पूछा मैं जा पाऊंगा या नहीं आपके धाम, और फैन उनके हाथ में था जो पिकॉक फेदर जो फैन है। वरदराज ने कहा नहीं, वरदराज ने जैसे कहा नहीं, उनके हाथ से वो फैन गिर जाता है और बिना कुछ कहे कमेंट दिए वहां से निकल पड़ते हैं कांचीपुरम। और निकलते निकलते वो समझ गए कि क्यों नहीं मैं जा पा रहा हूं, उन्होंने सोचा मैं भगवत सेवा तो कर रहा हूं लेकिन एक सेवा को अवॉइड कर रहा हूं। वो सीधा कांचीपुरम में नहीं रुके, वहां से चलते चलते उस रात को श्रीरंगम पहुंचे। वहां महान वैष्णव थे जिनका नाम था महापूर्ण, रामानुजाचार्य के कई गुरुओं में से एक हैं। तो महापूर्ण वहां थे, उनके घर में गाय थी और कई सारी सेवाएं थी। तो कांचीपुरम गए, अपने वैष्णव वेश को उतारा, सरल वस्त्र धारण किए और गए और कहा मुझे आप यहाँ सेवा दे दो, नौकरी दे दो। उन्होंने तो पहचाना नहीं, सारे वैष्णव जानते थे, इनका नाम सुना था सबने कांचीपुरम का, सारे स्थानों में साउथ के। तो जब महापूर्ण ने कहा कि हाँ हमारे गव्वे हैं उनको चराने ले जाओ, गोबर उठाओ, कंडे बनाओ, बहुत सारा कार्य है, तो उनकी गौशाला में जाकर रहने लगे और हर सेवा को करने लगे, घर के बर्तन धोते थे, सब चीजें करते थे। हाँ महापूर्ण महान वैष्णव थे, वो अपने पत्नी के साथ निवास करते थे श्रीरंगम में। तो ये जाकर सब प्रकार की सेवाएं करने लगे, इनके पास एक ही वस्त्र एक ही ड्रेस था। आज जब एक दिन बारिश आया तो गवों को चरा कर ले आए तो देखा बारिश से सारे भीग गए वो, और वो अपने कुटिया में जब बैठे, घास का जो कुटिया था, कपड़े उतारे, छोटा सा गमछा लगा के हाथ में जप माला दिया और चांट करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे राम का उच्चारण करते जा रहे थे उसी समय महापूर्ण को उनकी याद आई। महापूर्ण ने सोचा अरे ये जो मेरे घर में एक सेवक है, बारिश से भीग के आया है, उसके पास वस्त्र आदि नहीं होंगे, तो ये जाकर देखते हैं। तो उन्होंने वैष्णवेश थोड़ा सा धारण किया था, तिलक आदि लगाकर हरे नाम ले रहे थे शाम के समय में, ताकि किसी को दिखाई ना दे। और फिर इन्होंने कहा कि आप तो कांचीपुरम हो, आप तो वरदराज के सर्व प्रिय भक्त हो और मैं आपसे सेवा ले पा रहा हूं। नहीं नहीं आप जाओ, आप सीधा वापस कहां जाओ, वहां वापस जाओ वरदराज के पास। उसके बाद वो गए, उन्होंने उनको जब मना किया था तो वो बालाजी तिरुपति बालाजी गए। बालाजी ने कहा यहां आपको सेवा अवेलेबल नहीं है, तुम यहां नहीं कर सकते, तुम वापस वरदराज के पास। श्रीरंगम में भी गए, रंगनाथ का सेवा करने लगे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ सारी सेवा बुक्ड है, आप वापस वरदराज के पास जाओ। तो वो कांचीपुरम में आए वरदराज के पास, और वहां जब गए प्रणाम किया और फिर से अपना फैन उठाया, सेवा करने लगे। वरदराज ने कहा अभी तुम क्वालिफाइड हो गए हो मेरे धाम आने के लिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भक्तों का जो रोल है, वैष्णवों का, उनके बारे में श्रवण करना, उनका गुणगान करना, ये सर्वोत्कृष्ट और पवित्र होने का एक माध्यम है। इसलिए शास्त्र कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, बहुत अधिक पवित्र है वैष्णव का चरित्र, जिसको श्रवण करने मात्र से हम कृष्ण के प्रति अपने हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है उसको जागृत कर पाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, वो साक्षात भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे उतने दिन हर रोज वो अपने निवास स्थान से गदाधर पंडित जो टोटा गोपीनाथ में निवास करते थे, गोपीनाथ मंदिर में, वहां जाकर उनसे श्रीमद् भागवतम को रोज सुनते थे। और क्या सुनते थे श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भागवतम से कौन से विषयों को सुनते थे? जब भी जाते थे गदाधर पंडित को कहते थे कि गदाधर तुम वर्णन करना शुरू करो दो वैष्णवों का, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, बस उससे परे कोई और सब्जेक्ट उन्होंने गदाधर पंडित से नहीं सुना। और हमेशा उन्हीं लीलाओं को सुनते थे और उतना ही अधिक उनके हृदय में आनंद की वृद्धि होती थी। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं साधु साधु पदे पदे कृष्ण कथा को जब हम सुनते रहते हैं धीरे धीरे हमारा जो आनंद है उसका वर्धन होने लगता है। इसलिए कल ही महान जो आचार्य थे पांच, उनका आविर्भाव और तिरुभाव था। तिरुभाव था श्रील विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर का, आविर्भाव था रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनंदन ठाकुर विष्णुप्रिय देवी और मुझे याद नहीं आ रहे और एक वैष्णव थे। तो उनका जो चरित्र है रघुनाथ दास गोस्वामी का कल प्राकट्य था, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे कुछ समय के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो छह गोस्वामियों से एक हैं, अलग अलग गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत महत्वपूर्ण जो सेवा है वो की है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में प्रकट हुए थे, त्रिवेणी, दो त्रिवेणी हैं, एक तो प्रयाग में तीन नदियां मिलती हैं, गंगा सरस्वती और यमुना, लेकिन आगे चलकर बंगाल में एक स्थान आता है सप्त ग्राम, वहां ये तीन नदियां फिर से मुक्त हो जाती हैं। हाँ, उसको मुक्त त्रिवेणी भी कहा गया है। तीन डिफरेंट धाराओं में बहने लगती हैं, तीन अलग अलग नाम लेकर। तो उस स्थान में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जो राजा प्रियव्रत थे उनके जो पुत्र थे सात पुत्र, उन्होंने उस स्थान पर भगवत भजन किया था और जिसके कारण से उस स्थान को सप्त ग्राम कहा गया, सात पुत्रों ने वहां भगवत भक्ति किया था। तो उसी स्थान में सप्त ग्राम जो एरिया है वो रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था और वहां के जो मुलुकपति थे, मुलुक मीन्स राज्य छोटा सा या स्थान, हाँ, वो थे गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार। तो ऐसे दो महान जो व्यक्तित्व थे या बहुत अधिक धनाढ्य व्यक्ति थे कायस्थ परिवार के, उनके घर में ही रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही बहुत अधिक ऐश्वर्य से घिरे हुए थे। उनके पिताजी की आमदनी इतनी अधिक थी कि पूरे साल में 20 लाख गोल्ड कॉइन्स उनको प्राप्त होते थे, इतना सारा धन, और एक लौते पुत्र थे। लेकिन बचपन से ही देखा गया रघुनाथ दास गोस्वामी में कि वो उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी बलराम आचार्य से, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी यदुनंदन आचार्य से। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत छोटे थे, उसी समय हरिदास ठाकुर का संग उन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने जब बेनापुर ग्राम में हरिदास ठाकुर ने जब उस वेश्या का उद्धार किया था और वहां से वो चांदपुर एक विलेज में आए बंगाल में, और वहां ये जो बलराम आचार्य नाम के जो वैष्णव है उनके घर में रघुनाथ दास जो छोटे से बालक थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, अध्ययन करते थे, तो वहां हरिदास ठाकुर के द्वारा उनको कई प्रकार की शिक्षाएं मिली। हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद के कारण चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, से गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल है तिते वो विषय उदास, कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो बचपन से ही विषय भोग आदि के जो कार्य है उनसे उदास थे, विरक्त थे, और बलराम आचार्य के कारण उनको हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ था। हरिदास ठाकुर को प्रणाम करना, हरिदास ठाकुर के कीर्तन को सुनना, हरिदास ठाकुर की कुछ ना कुछ सेवाएं करना, और केवल कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इसलिए हुई क्योंकि उनको किसका आशीर्वाद मिला था, हरिदास ठाकुर का। रघुनाथ दास बालक करे न ध्यान, हरिदास ठाकुर तारे करे न दर्शन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन में ही हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई थी और जिसके कारण उनको आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है हम वो प्राप्त हुई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा अपने गीत में, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, कि भगवान के भक्तों की सेवाओं को छोड़कर किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। इसलिए राजा परीक्षित को जब ये शाप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, उड़ने वाले सर्प जो तक्षक है उसके काटने मात्र से, तो परीक्षित महाराज ने सारे वैभव आदि का त्याग करके वो चले गए और उन्होंने 2 चीजों का शेल्टर लिया, गंगा और वैष्णवों का, और जाकर उन्होंने निडर होके कहा कि आप क्या करो, गायतः विष्णु गाथा, आप तो रुको नहीं, आप विष्णु का गुणगान करो, मैं डर नहीं रहा हूं, चाहे मुझे उड़ने वाला चमत्कारी कोई भी सर्प आके काट ले मुझे उसका भय नहीं है, आप लोग क्या करते जाओ, कृष्ण कथा का वर्णन करते जाओ। तो उसी समय भगवान की आयोजन से जो शुकदेव गोस्वामी हैं वो प्रकट हो जाते हैं या वहां आते हैं और शुकदेव गोस्वामी को देखकर वो कहते हैं एशाम संस्मरणात् पुंसा, कि जिनका स्मरण करने मात्र से ग्रह आदि पवित्र हो जाते हैं तो फिर जिनकी सेवा करने से पाद शौच आसन आदि भी जिनके चरणों का जल के द्वारा धोने से या उनको आसन देने से उनकी सेवा करने से कितना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कहा कि इतना अधिक प्रभाव भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा से हमें प्राप्त होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने जीवन में एक ही अभिलाषा रखते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है, यही अभिलाषा मेरी तो यही अभिलाषा है, चाहे मैं किसी भी स्थान में क्यों ना हो, तांदेर चरण सेवी जो भगवान के पूर्ववर्ती आचार्य हैं वैष्णवगण हैं उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिले और सदैव निवास कहां मिले मुझे, भक्तों के संग में। इसी कारण से जो हरिदास ठाकुर का इन्हें संग प्राप्त हुआ था और उनकी सेवा के कारण बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में बहुत अधिक जो विरक्ति है इस भौतिक संसार के प्रति जागृत हो गए थे और इस विरक्ति ने इतना बड़ा रूप लिया जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 24 साल की आयु में संन्यास ग्रहण किया है केशव भारती के द्वारा कटवा में जाकर और वो अभी जगन्नाथपुरी निकलने वाले हैं, तो इनके गांव जो सप्त ग्राम है वहां के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए निकल रहे थे, तो ये रघुनाथ दास यंग थे, तो इन्होंने सोचा मैं भी जाना चाहता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पिता आदि उनको भेज नहीं रहे थे, फिर भी किसी परमिशन के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु का चरण स्पर्श करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके सर पर अपने चरण रखते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनका उचिष्ट उनको ग्रहण करने को मिलता है और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं कहां, जगन्नाथपुरी के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए और हरिदास ठाकुर का पहला ये चैतन्य महाप्रभु के साथ संपर्क था, केवल चैतन्य महाप्रभु के टच या चैतन्य महाप्रभु के थोड़े से स्पर्श में आने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी पागल हो गए थे। और जब वो घर वापस आए तो किसी भी प्रकार से उनका जो मन है अपने घर में नहीं लग रहा था और पागल की तरह वो कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे, अपना अधिक से अधिक समय कृष्ण कथा में बिताया करते थे, कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रभाव है, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में कोई भी ना, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, वो उनके संपर्क में आता है तो वो कृष्ण के लिए क्या हो उठता है, पागल हो उठता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है एक लीला का, जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया उसकी जीवा कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु शाम के समय में, शरद पूर्णिमा का समय था, शरद काले रात्रि सव चंद्रिका उज्ज्वल प्रभु ने जगनलया बेड़ाय रात्रि सकल। तो जब शाम का समय था शरद रात्रि का और चांद बहुत ही बड़ा होकर प्रकाशित हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को ले लिया जगन्नाथपुरी में अपने संग में और उनको लेते हुए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, कई गार्डन्स में घूमने लगे, समंदर के तट पर जाने लगे और जाते जाते भक्त लोग मग्न थे हरिनाम संकीर्तन में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भावावेश में प्रेमावेश में आकर वृंदावन में राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है उसका स्मरण कर रहे थे और उसका स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का स्मरण करते हुए अकेले ही चलते चलते उन श्लोकों को एक्सप्लेन करते हुए जा रहे थे और उस भाव में वो पागल की भांति नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और ऐसे जब जा रहे थे तो देखा कभी कभी चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते थे, कभी कभी सारे भक्तों को छोड़कर इधर उधर भाग जाते थे और अचानक ही स्वरूप दामोदर जब उनके निजी संगी थे, पार्षद थे, उनके द्वारा उन्होंने कई श्लोकों का गुणगान सुना था कृष्ण का, जब उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया जिसमें कृष्ण के दिव्य लीला का वर्णन है वृंदावन के, किस प्रकार से कृष्ण गोप सखाओं के साथ अपनी लीलाएं करते हैं, गोपिकाओं के साथ दिव्य लीलाओं में मग्न रहते हैं, तो इस लीलाओं का स्मरण करते करते कृष्ण कभी चैतन्य महाप्रभु कभी सुख का अनुभव करते थे, कभी दुख का अनुभव करते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को इतना अधिक आनंद हो रहा था कि मैं अपना ग्रंथ उसका वर्णन कर लो कि कितना आनंद हो रहा था तो ग्रंथ का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इवन वो कहते कि गणेश जी जो व्यास के आदेश पर लिखने का काम किया है उन्होंने शास्त्रों को, वो भी कभी भी लिख नहीं पाएंगे, इतना अधिक चैतन्य महाप्रभु आनंद अनुभव कर रहे थे, विशेष रूप से कृष्ण लीला को सुनकर, कृष्ण लीला भगवान के वृंदावन लीलाओं का आस्वादन करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर अचानक सारे भक्तों के संग में एक श्लोक का उच्चारण किया जिस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण गोपिकाओं के साथ वृंदावन के वनों में भ्रमण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही इस श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया और उच्चारण करते करते जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसको कहते हैं आई टोटा, जो गार्डन है समंदर के किनारे, उस स्थान में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और अचानक उनका जो दृष्टि है समंदर की ओर पड़ता है, क्योंकि अभी कौन सी भावना में है, वृंदावन की भावना में है, वृंदावन के स्मरण में है। चंद्रकांते उछलित तरंग उज्ज्वल झलमल करे जन यमुना रजाल। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि शरद चंद्र की चंद्रमा की किरणों के कारण या प्रकाश के कारण जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत अधिक उज्जवल और प्रकाशमान महसूस हो रहे थे, और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु को लगा ये तो यमुना का जल है। यमुना रभ्रमे प्रभु धाया चलेला अलक्षित जाय सिंधु जले झाप दिया। तो उनको लगा ये यमुना नदी है और वो अपने भक्तों के संग में मध्य रात्रि के समय चल रहे हैं और उस यमुना के भावना में आकर वृंदावन की भावना में समंदर को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने यमुना को सोचकर समंदर में जप लगाई, जैसे जप लगाई वो डूब गए और सार अमूर्छित होकर एक एक सूखे हुए लकड़ी की भांति समंदर में बहने लगे कई किलोमीटर। तो उस समय उनके साथ जो वैष्णव चल रहे थे स्वरूप दामोदर और कई सारे भक्त वो सोचने लगे और चैतन्य महाप्रभु किस भावना में थे, यमुना ते जल के लिए गोपी गण संगे कृष्ण करे महाप्रभु मग्न से ही रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस मूड में थे कि कृष्ण गोपिकाओं के संग में यमुना में जल विहार कर रहे हैं और उसी लीला का स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को यमुना में जप लगाते, लेकिन वो यमुना नहीं थी, वो क्या था, सागर था। जैसे वो गिर पड़े तो भक्तों ने देखा कहां गेला प्रभु, कि ये प्रभु कहां चले गए। तो स्वरूप दामोदर सारे भक्तों की टोली बनाकर अलग अलग स्थान में रात को ही भेज दिए, जगन्नाथ टेम्पल में, चटक पर्वत में, कई जो एरियाज है जगन्नाथ पुरी में, नरेंद्र जो सरोवर है, गुंडीचा मंदिर है, कोणार्क है, सब स्थानों में भेजा और देखा कि चैतन्य महाप्रभु मिल नहीं रहे थे। तो सबको लगा कि चैतन्य महाप्रभु का संग अभी पुनः प्राप्त करना असंभव है, वो अप्रकट हो गए हैं। फिर अगले दिन फिर पागल की भांति स्वरूप दामोदर भक्तों का एक टीम बनाकर निकलते हैं खोज करने के लिए। तो जैसे ये निकले हैं 30 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से कोणार्क टेम्पल है उस एरिया में गए। जाते जाते उनको क्या दिखाई दिया, कृष्णदास कविराज कहते हैं, देखिया एक जालिया ऐसे कांधे जाल करे हासे कांधे नाचे गाए भले हरी हरी। उन्होंने दूर से देखा कि एक जो मछुआरा है उसने जो जाल है मछली पकड़ने वाला वो अपने कंधे में रखा है और वो हंस रहा है, नाच रहा है और जोर जोर से उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर आदि ने देखा कि ये मछुआरा हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हरी हरी का उच्चारण कर रहा है, तो स्वरूप दामोदर को लगा कि ये कुछ विशेष चमत्कार है, क्योंकि कोई व्यक्ति हरी हरी का उच्चारण नहीं कर सकता जब तक वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में नहीं आया है। हम देखते हैं कोई भी शब्द अब इस्कॉन के बाहर हरी बोल शब्द सुनाई नहीं देगा, है ना, हरी 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 बोल, हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा का उच्चारण करो। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते हैं तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से वो मछुआरा ये चिल्ला रहा था, कह जाने या ये देखे देखिला एक जान तुम्हारे ये दशा के ने कहत कारण। उन्होंने कहा है मछुआरे, आपने एक व्यक्ति को देखा है क्या, यहाँ हम एक व्यक्ति की खोज में निकले हैं और तुम मुझे बताओ तुम्हारी ये जो दशा हुई है इसका कारण क्या है, क्या रीजन है, तुम ये पागल की बात हरी हरी करते जा रहे हो, कभी नाच रहे हो, गा रहे हो, मछलियां पकड़ते हो, ये दशा कैसे तुम्हारे अंदर हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैंने मनुष्य तो नहीं देखा लेकिन एक मृत शरीर जरूर देखा है, डेड बॉडी मुझे नजर आई है। उसने कहा, जालिया कहे यहाँ एक मनुष्य ना देखिला जाल बहते एक मृत मोर जाले हैला। मैंने मनुष्य तो नहीं देखा लेकिन मेरे जाल में एक मरा हुआ एक मृतक है, वो जरूर आया है। बड़ा मत्स्य बलिया में उठाई लू जतने मृतक देखते मोर भय हैला मने। मैं जब अपना जाल डाला था समंदर में और
सोचा कि बहुत हेवी लग रहा है, बड़े मछली होगी, बड़ा बिजनेस होगा। मैंने उस उठाया, उस जाल को उठाते रहा, लेकिन देखा मछली तो नहीं, हाँ लेकिन एक डेड बॉडी, मृतक शरीर मैंने देखा। उसको देखकर मेरे हृदय में भय का संचारण हुआ, भयभीत होने लगा। जाल खसाए तारा अंग स्पर्श हैला, स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय फसिल। हाँ, स्पर्श महाप्रभु के संपर्क में आने मात्र से पागल हो जाता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हुए। तो जब उस मछुआरे ने कहा कि वो जाल में उस मृतक शरीर जो था, उसको जाल अपना में निकाल रहा था, निकालते निकालते थोड़ा सा मेरे हाथ का शरीर का स्पर्श उस बॉडी से हुआ, और होने मात्र से उसमें भूत मेरे हृदय में चला गया। भयतम पहल मोर नेत्र बहे जाल, गद गद वाणी मोर उठी लसकल। उन्होंने कहा तब से ये सारी चीजें मेरे अंदर होने लगी हैं, भयभीत होने लगा हूं, कंपन हो रहा है, मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है, मेरे वाणी में कंपन है, गदगद वाणी हो रही है। तो वो सोचने लगे, उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म दैत्य कि वह भूत कहे न जाए, दर्शन मात्र मनुष्य रह पैसे से ही काय। कि मैं ये नहीं सोच सकता, समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्रह्म राक्षस है या कोई भूत है, जिसको देखने मात्र से मेरी ये अवस्था हो गई है। तो उन्होंने कहा जो वो शरीर है वो बहुत लंबा है, और उस शरीर के जो जॉइंट से वो निकले हुए हैं केवल ऊपर से क्या है, चमड़ी आदि है। अस्थि संधि छुटिले चर्म करे नड़ बड़े, तहा देखी प्राण कार नाही रही धड़े। कैसे जब से मैंने उस शरीर को देखा है इतना लंबा, जिसके जॉइंट्स खुले हुए हैं, पूरे शरीर के जॉइंट्स जब से मैंने देखा है, तब से मेरा प्राण मेरे शरीर में नहीं रह रहा है। तो उन्होंने कहा स्वरूप दामोदर को, वो तो भूत का ही रूप है, और उसकी आंखें खुली हैं, और वो आवाज करता है, गो 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 आवाज निकलती है, और कभी वो अचेतन हो जाता है, कभी आवाज निकलता है। तो मैंने डायरेक्ट अपनी आंखों से उस भूत को देखा है, और उसने मुझे झपट लिया है, और तब से मैं ये चिंता में हूं कि इस भूत ने मुझे झपटा है तो फिर मेरे बाद मेरी पत्नी बच्चे उनका कौन देखभाल करेगा, हाँ मेरी ये अवस्था हो जाएगी। तो मैं उस भूत के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो अभी ओझा ढूंढ रहा हूं जो इस भूत को क्या कर सकता है, निकल सकता है। तो इस प्रकार से वो जो मछुआरा है वो सोचने लगा, और वो बोल रहा था स्वरूप दामोदर से, उन्होंने कहा एक रात्र भूले मत्स्य मारे निर्जने, भूत प्रेम अमर ना लागे नरसिंह स्मरणे। उन्होंने कहा एक रात्रि तो मैं, एक रात्रि नहीं, ऐसे पहली बार ही हुआ है, मैं पहले भी रात रात मछली मारने के लिए जाता था, लेकिन इस रात्रि और जब जाता था तो भय तो रहता है भूत आदि का, लेकिन मैं क्या करता हूं, भूत प्रेम अमर ना लागे नरसिंह स्मरणे, नरसिंह का स्मरण करता हूं तो कभी मुझे उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जो भूत है ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, उन्होंने कहा क्या 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 विशेषता क्या है, अंतर क्या है इसका, यही भूत नरसिंह नामे चाप ये द्विगुण, क्योंकि ये भूत जैसे मैं नरसिंह नाम का वर्णन करता हूं और पावरफुल हो जाता है। ताहर आकार देखते भय लागे मने, उन्होंने कहा कि उसका आकार देखकर मुझे भय होता है, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण नाम या नरसिंह नाम को सुनने मात्र से वो और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस भूत से मुक्ति पाने के लिए किसी ओझा को ढूंढना है, और उसके पास जाकर इसे मुक्त हो सकता हूं। स्वरूप दामोदर ने समझ सोच लिया कि वो भूत कोई और नहीं है, वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उन्होंने कहा आमी बड़ा ओजा जाने भूत छाड़ाए ते, मंत्र पढ़े श्री हस्त दिला तहर माथा ते। तो उन्होंने कहा मैं तो सबसे बड़ा ओजा हूं, मैं ये जो भूत लगा हुआ है आपको इसको उतारने में एक्सपर्ट हूं। उस मछुआरे को बुलाया और चैत्य जो स्वरूप दामोदर ने क्या किया, तीन चापड़ मारे कान में और उन्होंने कहा कि अब डरो मत, अब ये जो भूत है ये निकल के चला गया है। स्वरूप कहे जा रहे तुम्हें कर भूत ज्ञान, भूत नहीं ते हो कृष्ण चैतन्य भगवान। स्वरूप दामोदर ने कहा कि वो भूत नहीं है, वो साक्षात कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। तो वास्तव में इन्होंने कहा ले चलो हमें उनके पास ले चलो। तो चैतन्य महाप्रभु के पास स्वरूप दामोदर आदि उनके भक्तों को ले जाया गया और जैसे वो गए उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो आकार है इतना अधिक लंबा हो गया था भगवत प्रेम विकार के कारण, और चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर में बालू लगी हुई थी, और फिर ये सारे वैष्णव उनके दूसरे वस्त्र पहनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु अचेत अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे, और उनको ले जाना भी बहुत असंभव था, कठिन था। कैसे ले जाएंगे, सारे ज्वाइंट्स खुले हुए हैं, लंबे लंबे खुले हुए हैं ज्वाइंट्स, जैसे कोई बोरी है। तो फिर इन्होंने सोचा असंभव है, तो इन भक्तों में स्वरूप दामोदर एक्सपर्ट थे, वो जानते थे उसका उपाय। सबे पहले उच्च करे करे न संकीर्तने, उच्च करे कृष्ण नाम कहे न प्रभु रकाने। तो उन्होंने क्या किया, सारे भक्त इकट्ठा हो गए और कहा चैतन्य महाप्रभु के कान के पास, और जैसे कान के पास सबके मुंह गए और उन्होंने जोर से उच्चारण किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कतक्षणे प्रभुर काने शब्द परशिला, ओंकार करिया प्रभु तब ही उठिला। जैसे ही भगवत नाम से चैतन्य महाप्रभु के कानों में गए उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु ओंकार गर्जना करते हुए उठते हैं, और उठते तो क्या देखते हैं, सारे भक्तों ने उनको घिरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा काले देखिया आमी गेला वृंदावन, देखी जल क्रीड़ा करें ब्रजेंद्र नंदा। मैं तो वृंदावन गया था कालिंदी यमुना में, कृष्ण के जल क्रीड़ा आदि को देख रहा था, जहां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नाना प्रकार की कार्यकलापों में मग्न थे। राधिका दि गोपी गण संगे एकत्र मेले, यमुना रजले महारंगे करे न केले। उन्होंने कहा कि मैं तो वहां देख रहा था कि श्रीमती राधिका और कृष्ण आदि जल विहार कर रहे थे, और मैं उस सरोवर के यमुना के किनारे खड़ा था, और खड़ा होकर जो गोपियां हैं वो मुझे बता रहे थी, समझा रहे थे कि क्या क्या कार्यकलाप हो रहे हैं। हाँ, और उसी समय क्या हुआ, हे न काले मोरा धरी महा कोलाहल करे, तुम्हें सब यहाँ लैया आए ना। कि उसी समय मैं ये सब देख रहा था और उसी समय आप लोगों ने बहुत कोलाहल मचा दिया, बहुत जोर जोर से चिल्लाए मुझे, आप क्या कर क्या आप लोगों ने वापस वृंदावन से यहाँ ले आए हो, और मेरे सुख में आपने क्या डाला है, भंग किया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संग में कोई भी आता है तो वो पागल हो जाता है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को कृष्ण कथा को सुनने के लिए लालायित रहते थे, और जितना अधिक श्रवण करते जा रहे थे उतना ही प्रगट आसक्ति उनका चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के प्रति हुआ था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि मेरा जीवन तो एक मछली के समान है, जो मछली पानी से बाहर तड़प रही है, वो मछली फिर से जाना चाहती है पानी में अपना पूर्ण आनंद की अनुभूति करने के लिए। तो मुझे तो केवल यहां रहना नहीं है अपने पारिवारिक जीवन में, मैं तो नीलाचल जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करना चाहता हूँ। आपने परिवार के लोगों को कहा, माता पिता को कहा आप मेरे वास्तविक हितेशी है, तो आप मुझे कहा भेजो, जगन्नाथपुरी भेजो, मैं वहां सुखी निवास करूंगा, सुख से रहूंगा। तो वास्तव में बचपन से उनको जीरो ये था, अनुराग था भौतिक संपदा आदि के प्रति। इसलिए षड्गो स्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य कहते हैं त्यक्त्वा दूर्णम शेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, कि ये जो छह गोस्वामी थे ये कोई सर्वसाधारण घर से नहीं आए थे, ये मंडलपति थे,
बड़े बड़े राजा के पुत्र आदि थे, धन संपदा भौतिक संपदा जिनके पास अनुपम थी, लेकिन फिर भी ऐसे भौतिक धन संपदा पद आदि को त्याग कर कैसे त्यागा, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति तुच्छवत, तुच्छ के समान। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से भरत महाराज ने अपने राज्य को त्यागा था, जिस कैसे त्यागा था, मलवत, जैसे मल त्यागता है सुबह कोई व्यक्ति तो कुछ सोचता नहीं है, हाँ या नहीं सोचता कि अरे बहुत मूल्यवान चीजें सुबह सुबह मैंने खो दी, पूरे दिन टेंशन में रहता है, नहीं। वैसे ही राजा भरत ने सब चीजों को त्यागा था। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का बिल्कुल आकर्षण नहीं था भौतिक जगत में, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जीवन के धन तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण, मेरे धन क्या है जीवन के, नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण के चरण हैं। इसलिए प्रभुपाद एक गीत हमेशा गाया करते थे, गोरा पहु ना भजिया मैनू, हे गौरांग महाप्रभु मैंने आपके चरणों की सेवा नहीं की है, प्रेम रत्न धन गेला या हरायनो, प्रेम रत्न जो भगवान के प्रति प्रेम है हमारा स्वाभाविक, ये अमूल्य धन हम खो चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उस धन को प्राप्त करने के लिए भक्तों के संग की सहायता लेते हैं, और वास्तव में हमने खो दिया है। हम जैसे शास्त्र में एक उदाहरण आता है, एक वृद्ध स्त्री चलती है अपना हाथ में डंडा लेकर, बिल्कुल वक्र हो गई है, बिल्कुल ऐसे गोल हो गई है पूरी बॉडी, कमर बिल्कुल ऐसे यू टर्न लिया है। तो एक युवती उसके पास से गुजर रहे थे, उस यंग लेडी ने, एक यंग युवती ने कहा कि, उन्होंने कहा आप तो बहुत हंसने लगे उसको देखकर, बूढ़ी है कैसे हो गया आपका शरीर पूरा वक्र हो गया है, क्या ढूंढ रही हो, मजाक करते करते बच्चे कुछ कमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा आप ऐसे बिल्कुल टेढ़ी हो गई हो, उनको पता है कि शरीर ओल्ड हो गया तो गोल हो गया है, तो उन्होंने कहा आप नीचे इतना झुक के जा रही हो ऐसे देखते हुए, क्या ढूंढ रही हो, क्या खो गया है, उन्होंने कहा कि मेरी एक मूल्यवान चीज खो गई है, मेरा क्या खो गया है, यवन खो गया है, मैं भी तुम्हारे समान क्या थे, यवन थी, लेकिन अभी वो जीवन मेरे पास नहीं रहा, वो खो दिया है मैंने, और तुम्हारी भी स्थिति ऐसे ही होने वाली है। तो उसी प्रकार से हमने भी अपने हृदय का जो धन है, कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है, उसको खो दिया है, और वो हमें प्राप्त होता है जब हम भक्तों का संग में आते हैं। इसलिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को फिर से मिलते हैं, पहली बार तो वो मिले तब से वो मैड ही हो गए, और जब उनको दूसरी बार मिलने का मौका मिला, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, वृंदावन वो गए नहीं लेकिन रूप सनातन को मिले, उनको दीक्षा दी, और वापस फिर से अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर आकर वो निवास करने लगे, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मुझे उनको मिलने के लिए जाना है, तो उनके पिताजी आदि उनको भेज नहीं रहे थे, और क्योंकि पहली भेंट में इतने पागल हो गए हैं, अभी दूसरी मुलाकात में तो बच्चा हाथ से निकल सकता है कि नहीं, तो उन्होंने सोचा एकलौता बेटा है, और वो भी पूर्ण रूपेण भक्त बन जाए, सन्यासी हो जाए, तो हमारा इतना जो साम्राज्य हमने बनाया है ये किसके लिए, हाँ, तो बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का मन नहीं लग रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु को दूसरी बार मिले, क्योंकि उन्होंने तब तक चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाओं को सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, राजा प्रताप रुद्र पर आपने कृपा आदि की, दक्षिण भारत की यात्रा में अलग अलग लोगों पर चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कृपा की, इन सारे कार्यकलापों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना था, और वो सुनकर चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका अनुराग बहुत अधिक तीव्र हो रहा था, वो अभी बिल्कुल कन्विंस थे कि नहीं अभी मुझे निकल जाना है यहां से। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, क्योंकि पहले मुलाकात के बाद उनके पिता ने 11 सिक्योरिटी गार्ड उनके लिए रखे थे, और ये बिल्कुल कभी कभी घर से भाग के निकल जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ पकड़ के लाके घर में बंद कर देते थे, तो उनके जो माता थी, माँ को तो बहुत चिंता होती है कि नहीं, प्रेम होता है, क्योंकि माँ के शरीर में हमारा शरीर बना होता, इसलिए हमें सर्वाधिक आसक्ति पिता से भी किससे होती है, पिता से अधिक माँ से होती है, क्योंकि उसके शरीर से हमारा शरीर बना हुआ है। तो माँ को तो बहुत अधिक आसक्ति थी रघुनाथ गोस्वामी से, रघुनाथ से, और वो सोचती थी अपने पिता को डांट, उनके पति को डांटती थी गोवर्धन को, कि तुम ये बार बार भाग के जाता है, इसको बांध दो ना, बड़े बड़े लोहे की ये लाओ, चैन लाओ, इसको बांध के रखो। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत सरलता से बोल रहे हो, मैंने तो इतने बड़े बंधन से इसको बांधा है, आज तो कोई उससे छूट रहा नहीं सरलता से, लेकिन ये जो है उस बंधन से भी नहीं बंधा गया, उस बंधन से भी इसको बांधा नहीं गया है। तो उन्होंने पूछा, क्या बंधन है? उन्होंने कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा साम ये सब बांधे ते नारी केल जारमान। कहते कि इस संसार में दो चीजें से व्यक्ति अपने आप बन जाता है, एक है, उन्होंने कहा, ये जो रघुनाथ है इसके पास जो ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, किसके समान है? इंद्र के समान। इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, इसकी जो पत्नी है वो सर्वसाधारण नहीं है, अप्सरा से भी अधिक सौंदर्यवान है। उन्होंने कहा, इस जगत में ये दो चीजों से व्यक्ति अपने आप ही बंध जाता है। जैसे लोग कहते ना, कोई युवक घर में काम धंधा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो कहते इसका शादी कर दो, ठिकाने में आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अभी मैंने तो इसको इन दोनों चीजों से बांध दिया, फिर भी वो नहीं बंधा। हाँ, क्यों नहीं बंधा? चैतन्य चंद्र कृपा हया छे जहारे, कि जिसके ऊपर से चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, चैतन्य चंद्र बातुल के राखे ते पारे, कि जिसके ऊपर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति पागल हो जाता है। और ऐसे पागल व्यक्ति को इस संसार में बांधने के लिए कोई भी ऐसी श्रृंखलाएं या चैन आदि नहीं बनी है, जो उसको बांध के नहीं रख सकती। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनका इतना प्रगाढ़ आसक्ति था, इतना प्रगाढ़ प्रेम था, वो पागल हो गए थे। और फिर ऐसे रघुनाथ दास दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि अभी मुझे सहा नहीं जा रहा है ये जो भौतिक जीवन है, आप क्या करो, मुझे यहां से निकालो, मुझे आपकी ओर जाने दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं, तुम क्या करो, अभी स्थिर है या घरे जाओ, नहाओ बातुल क्रमे क्रमे पायलो का भव सिंधु को, तुम पागल मत हो जाओ, इतनी कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे तुम मैच्योर हो जाओगे तो फिर सरलता से इस बहु बंधन से निकल सकते हो। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाया, जथा योग्य विषय पुंज आना सकता है या। तुम मरकट वैराग्य मत दिखाओ, यथा योग्य विषयों का जितना आवश्यक है उपभोग करते हुए अपना जीवन कंटिन्यू करो। कैसे करो? अंतर निष्ठे कर, निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, बाहरी रूप से तो तुम इस प्रकार से दिखाओ सर्व सामान्य व्यक्तियों को कि आप क्या हो, भौतिक कार्यकलापों में लगे हो, लेकिन अंदर क्या करो, अंतर निष्ठा। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए पुंडरीक विद्यानिधि, उनके बारे में वर्णन आता है, वो कितने महान भक्त थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जब आदेशों को उन्होंने सुना कि मरकट वैराग्य मत दिखाओ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मरकट वैराग्य का मतलब ही है, मरकट का मतलब है बंदर, तो बंदर भी कभी वस्त्र नहीं पहनता, ना घर बनाता है, विरक्त जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस टहनी से उस टहनी पर, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक डजन से अधिक बंदरियों को रखता है, लेकिन क्या है वो, वैरागी है, इसको मरकट वैरागी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, और फल्गु वैरागी क्या है, जो टेम्पररी है, जो स्मशान वैरागी है। तो इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये जब आदेश दिया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि मुझे क्या करना है, कि मुझे वापस जाकर अपनी सेवा को करते रहना है। तो एक अनाउंसमेंट है, प्रसाद सेवा के लिए जो सेवक है
वो प्रसाद सेवा के लिए बाहर जा सकते हैं। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वापस भेजते हैं और घर जाकर सर्व सामान्य व्यक्ति की तरह हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी आचरण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा सोच रहे थे कि कैसे बाहर जाऊंगा, कैसे यहाँ से भागूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण जब समय आएगा तुम्हें बुद्धि देंगे और उस समय ऐसी युक्ति देंगे कि उस समय तुम खुद ही निकल पड़ोगे ये जाल से। तो एक दिन आया रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में थे, हाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, रात के समय अर्ली मॉर्निंग में उनके जो गुरु हैं यदुनंदन आचार्य उनके पास आए। उन्होंने कहा, रघुनाथ जो सुबह मंगल आरती के लिए पुजारी अभी तक आया नहीं है, तुम क्या करो, अभी मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तुम पुजारी को लेकर आओ मंगल आरती की सेवा करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, गुरुदेव आप बैठिए, हाँ मैं पुजारी को ले आता हूँ। तो उसी समय कृष्ण उनको बुद्धि देते, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था समय आएगा कृष्ण बुद्धि देंगे और तुम यहां से निकल पड़ोगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा इससे अधिक बेस्ट उपाय नहीं है भाग निकलने का घर से। तो मंगल आरती के बहाने वो निकल पड़े उस पुजारी को बुलाने। हाँ पुजारी को बुलाकर वो क्या हो गए, रास्ता दूसरा पकड़ा और जगन्नाथपुरी जाने के लिए 18 दिन लगते हैं। वो जंगलों से दौड़ते दौड़ते 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि 12 दिनों में केवल 3 ही दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया था, प्रसाद ग्रहण किया था और बाकी समय सदैव नाम गान करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का कार्यकलाप है, उनके दिव्य चरित्र है, आगे कभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस सेक्शन को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और आप देखते हैं कि वो महान जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक गोस्वामी का जो पद है वो प्राप्त करते हैं और निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की, अद्वैत पावन श्रील प्रभुपाद की, निदान गौर प्रेमानंदे।